प्रियल कुछ देर बाद कमरे से बाहर आई। उसने देखा निक, रॉन और अंकित पास वाले घर में जा चुके थे, जहां वे लोग प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ रिपोर्ट बना रहे थे। प्रियल हॉल में परी, जीनी और एमा के पास आकर बैठ गई। जीनी ने कहा, अब तो तुम्हें कोई नाराजगी नहीं है ना हम लोगों से या निक से? नहीं, प्रियल ने छोटा सा जवाब दिया। परी ने पूछा, तो इसका मतलब तुमने जीजू को माफ कर दिया? मैंने ऐसा भी नहीं कहा। मत भूलो कि उन्होंने मुझे घर से निकाला था। अगर उनके दिल में दर्द था मेरे बारे में तो मुझे बताते, जरूरत थी अकेले हीरो बनने की, प्रियल ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। लेकिन प्रियल, रिश्तों में इतने लंबे समय तक नाराजगी ठीक नहीं होती, इससे दूरियां बढ़ती हैं और रिश्तों में प्यार खत्म हो जाता है। अगर अभी भी तुम निक को लेकर कोई गलतफहमी रखती हो तो दोनों बैठकर बात कर लो, एमा ने कहा। जीनी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ प्रियल, एमा बिल्कुल सही बोल रही है, आई ऑल्सो थिंक सो। 5 साल बहुत लंबा समय हो गया, तुम दोनों काफी समय से एक दूसरे से दूर रह रहे हो। तो क्या मुझे उन्हें माफ़ कर देना चाहिए? लेकिन मैंने ऐसा किया तो वे फिर प्रोजेक्ट पर फोकस नहीं कर पाएंगे। प्रियल उलझन में थी कि क्या निर्णय ले। परी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, एमा ने हंसते हुए कहा। एक समय वो था जब निक कहता था कि मैं प्रियल को नहीं बताऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, वरना वो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएगी। एक समय ये है जब प्रियल बोल रही है कि अगर उसने निक को माफ़ कर दिया तो वो प्रोजेक्ट पर फोकस नहीं कर पाएगा। प्रियल, तुम्हें एक बार निक से जाकर बात करनी चाहिए, प्लीज़ एक छोटा सा कदम आगे तो बढ़ाओ। प्रियल चुपचाप बैठकर उन सब की बात सुन रही थी। परी ने कहा, ठीक है दीदी, हम तुम्हारी डिसीजन का सम्मान करते हैं। तुम्हें जीजू को माफ़ करना है या नहीं करना, ये तुम्हारी समस्या है, लेकिन कम से कम जाकर बात तो करो उनसे। बेचारे कब से अकेले रहते हैं, दोस्त बनकर ही बात कर लो। सबके समझाने पर प्रियल निक से बात करने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, पहले कुछ खा लूँ फिर चली जाऊँगी, प्रियल ने टालने के लिए कहा और वहाँ से किचन में चली गई। रिपोर्ट बनने के बाद रॉन, अंकित और निक तीनों बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे और साथ में कुछ हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। निक ने उन दोनों से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि वो सब कुछ भूलकर मेरे साथ फिर से एक नई शुरुआत करेगी? रॉन ने जवाब देते हुए कहा, कर सकती है अगर तुम उसे सब कुछ सच सच बता दो तो। अंकित ने कहा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम उसे सब कुछ छुपा ही क्यों रहे हो। अगर पहले दिन ही सब बता दिया होता कि तुमने वो सब क्यों किया था तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। पिछले 5 साल से दोनों अलग हैं और अब वो तुम्हें माफ़ नहीं कर रही। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए फिर सही समय आने पर मैं उसे सब सच बता दूंगा, लेकिन उससे पहले प्लीज़ तुम लोग किसी से कुछ मत कहना, निक ने जवाब दिया। रॉन ने कहा, जब 5 साल तक छुपा सकते हो तो अब तो सिर्फ 5 या 6 महीने की बात होगी। काश तुम उस दिन दत्ता और जॉनसन से मिलने वहाँ जाते ही नहीं। अंकित के चेहरे पर उदासी थी। निक ने कहा, ये काश अक्सर काश ही रह जाता है। मैं उस दिन वहाँ से पूरी प्लानिंग करके आया था कि मुझे घर आकर सब कुछ कैसे करना है। मुझे नहीं पता था कि मुझे पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाएंगे और सब इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। अंकित ने कहा, वो सब इसीलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने अपने अंदर वो सब दर्द पाल रखा था। कभी तो ये सब बाहर आना ही था, और बाहर आया तो भी गलत समय पर। जब प्रियल को सब कुछ पता चल जाएगा वो तुम्हें ज़रूर माफ़ करेगी। तुमने तो हमें, जीनी और एमा को भी बताने से मना कर दिया, रॉन ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। निक ने कहा, हाँ, क्योंकि उन्हें पता चलता तो दोनों मिलकर मेरी जान ले लेती कि मैंने अपने प्लान में उन्हें नहीं इन्वॉल्व किया। अगर मैं उन्हें इन्वॉल्व करता तो जो गलती प्रियंका जी ने की थी वही गलती एमा करती थी। रॉन, तुम उस रात प्रियल को पहले सब कुछ बता देते तो शायद वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाती, निक ने कहा। मुझे लगा इन सबसे वो अपसेट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रियंका जी के घर जाएगी। अगली सुबह मैं सब ठीक कर देता, लेकिन प्रियंका जी गुस्से में अपने साथ साथ उन दोनों की भी जान ले ली। साथ ही मुझे नहीं पता था कि प्रियल मुझे छोड़कर इतनी दूर चली जाएगी, अंकित ने कहा। अगर प्रियंका जी उस दिन वो बेवकूफ़ी नहीं करती तो अगली सुबह वो दोनों अरेस्ट होने ही वाले थे। छोड़ो ना यार ये सब, प्रियल को पूरा नहीं तो थोड़ा तो सच पता चला। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो अब मुझसे सही से बात तो करने लगी है, निक ने पूरी स्थिति को पॉजिटिवली लिया। वे तीनों बात कर रहे थे कि तभी प्रियल वहां पर आई। उसने देखा वे सब कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं। वो दरवाजे पर खड़े होकर उनकी बात सुनने लगी। रॉन ने कहा, तो आगे क्या प्लान है? निक ने हंसते हुए कहा, तो आगे का प्लान ये है कि पहले मुझे जाकर थोड़ी शॉपिंग करनी होगी और प्रियल के लिए कपड़े लेने पड़ेंगे। देखा नहीं मेरे कपड़ों में बिल्कुल जोकर जैसी लग रही थी। ये तो सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी, वरना उसे देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी और मैं हंस भी नहीं सकता था। निक की बात सुनकर प्रियल गुस्से में आई। उसने गुस्से में अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और कहा, मैं और जोकर? निक ने सोचने वाला चेहरा बनाया। प्रियल गुस्से में निक को मारने के लिए उसके पीछे भागी। वो उससे बचने के लिए उसके आगे आगे दौड़ रहा था। निक ने दौड़ते हुए कहा, गुड़िया, तुम्हें ये कपड़े फिट नहीं आ रहे, तो तुम जोकर जैसी ही लगोगी ना। अब इंसान सच भी नहीं बोल सकता। रॉन, अंकित, क्या हो गया 5 सालों में मेरी वाइफ को? जब देखो मारने के लिए पीछे भागती रहती है, अंकित ने कहा। हाँ, अब तुम खुद ही निपटो, रॉन ने कहा, हमारा काम तो हो गया तो हम घर जा रहे हैं और डिनर पर मिलते हैं। प्रियल, अच्छे से मारना इसे। निक ने हाँफते हुए कहा, अरे कहाँ जा रहे हो अकेले छोड़कर, रुको। प्रियल निक के पीछे भाग रही थी जबकि रॉन और अंकित वहां से चले गए। निक ने कहा, देखो अभी कुछ देर पहले हम बेबी प्लान कर रहे थे और अब तुम खुद भूत जैसे करने लगी हो। ऐसे करोगी तो वो क्या सीखेंगे। अब तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी जोकर तो कभी नौकरानी। खुद को बड़ा हीरो समझते हो। तुम्हारी ये नीली आंख मुझे इरिटेट करती है और टिपिकल इंडियन सीरियल की किसी इच्छाधारी नागिन की याद दिलाती है। निक ने रुककर बोला, व्हाट, क्या बकवास कर रही हो। इतने दिनों तक तो तुम्हें मेरी आंख बहुत अच्छी लगती थी और अब जब इंसल्ट करने पर आई हो तो डायरेक्ट ही एग्जाम्पल तो अच्छा देती, हद हो गई यार। हाँ तो मैं भी जोकर नहीं हूँ और आपकी आंखें, बोलते हुए प्रियल रुक गई। निक ने उसके करीब आकर कहा, क्या मेरी आंखें। प्रियल ने निक से दूर जाने की कोशिश की लेकिन निक उसे खींचकर अपने बिल्कुल करीब ले आया। निक जब उसके और पास आया तो प्रियल की आंख अपने आप बंद हो गई, जैसे उसे निक के पास आने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। निक ने प्रियल की गर्दन पर हल्के से किस किया। निक ने प्रियल के कान में धीरे से कहा, अभी थोड़ा वेट करो मिस शर्मा, मेरी वाइफ के करियर का पहला लीडिंग प्रोजेक्ट है, पहले उसका अच्छे से होना ज्यादा जरूरी है। प्रियल ने निक को धक्का दिया और हंसते हुए कहा, अच्छा अब पास मत आना मेरे, वरना। निक ने प्रियल के पास आते हुए कहा, वरना क्या। वे दोनों आगे कुछ बोलते उससे पहले ही उन्हें गेट के बाहर किसी के जोर जोर से लड़ने की आवाज आई। दोनों दौड़कर बाहर आए तो देखते हैं कि एक कपल जिनकी उम्र लगभग 28 से 30 साल के बीच थी, वे दोनों झगड़ा कर रहे थे। वो लड़का जोर जोर से रोए जा रहा था जबकि लड़की उसे चुप करवाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उस लड़के ने गुस्से में उस लड़की को धक्का दिया कि तभी निक ने आकर उसे गिरने से पहले ही संभाल लिया।
निक ने गुस्से में उस लड़के से कहा, ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसे धक्का क्यों दिया, चोट लग जाती तो। देखो बोल भी कौन रहा है, लगता है खुद के किए कांड भूल गए, प्रियल धीरे से बड़बड़ाई। निक को प्रियल की बात सुनाई दी तो उसने उसे गुस्से से देखा। प्रियल ने अपना बड़बड़ाहट बंद किया और उनके पास आई। निक ने कहा, कौन हो तुम लोग और ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हो। मेरा नाम मोहित है और ये मेरी पत्नी है नंदिनी, इसकी। उस लड़के ने अपना और अपनी पत्नी का परिचय दिया। अपनी बात पूरी होने से पहले ही वो रोने लगा, इसकी वजह से मेरे बच्चे की मौत हो गई, वो भी उसके पैदा होने से पहले ही। इसने मेरे बच्चे की जान ले ली, ये उसे ठीक से संभाल नहीं पाई। नंदिनी ने रोते हुए कहा, मेरा मिसकैरेज हो गया था तो इसमें मेरी क्या गलती थी, अकेले आपको ही दर्द नहीं हुआ, मुझे भी उतनी ही तकलीफ हुई है। वे दोनों अपनी बात कर रहे थे तो निक और प्रियल एक दूसरे की तरफ देखने लगे। निक की नज़रें नीचे झुक गईं। निक ने कहा, तो क्या हुआ, शायद भगवान ने उसका इस दुनिया में आना तय ही नहीं किया था, और भविष्य में तुम लोग और बच्चे प्लान कर लेना। नंदिनी अब माँ नहीं बन सकती है, बोलते हुए मोहित की आवाज़ भारी हो गई। मोहित की बात सुनकर प्रियल भागकर वहाँ से चली गई। उसके इस तरह जाने से सब हैरानी से उसे देख रहे थे। प्रियल वहाँ से भागकर घर पर चली गई कि तभी मीरा भी वहाँ शोर सुनकर बाहर निकल कर आई। मीरा ने कहा, इन्होंने क्या हुआ जो ऐसे भाग कर गई, ये तो आपके घर की नौकरानी है ना। निक ने गुस्से में कहा, माइंड योर लैंग्वेज, वो कोई नौकरानी नहीं है, वो मेरी, बोलते हुए निक रुक गया और सोचने लगा, अभी प्रियल की साइड बताना सही नहीं होगा, क्या पता ये लोग कैसे हैं, ऐसे में किसी पर भी भरोसा करना सही नहीं होगा। मीरा ने कहा, वो आपकी नौकरानी नहीं है तो कौन है, आपकी वाइफ। निक ने कहा, नहीं मेरी फ्रेंड है और उस दिन मैं उसे परेशान करने के लिए वो सब बोल रहा था। तुम मुझे छोड़कर इन पर फोकस करोगी। मेरा हमेशा से सपना था कि खुद का एक घर हो और उसमें अपने बच्चों के साथ सुकून से रहूं। जब शाम को ऑफिस से आऊं तो वे अपने नन्हे कदमों से दौड़कर मेरे पास आए और मेरे सारे दिन की थकान वे देखकर ही दूर हो जाए। मोहित ने सुबकते हुए कहा, ये सबका सपना था। निक ने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम नंदिनी को इस वजह से और दुखी करो कि वो माँ नहीं बन सकती है। वो ऑलरेडी इस दर्द को झेल रही है कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, और तुम हो कि बार बार उसे वही बात याद दिला रहे हो। काश कि ये मेरे दिल का दर्द भी समझ पाते, नंदिनी ने दर्द भरी आवाज में बोला। लेकिन उस दर्द का क्या नंदिनी, जो मैं हर रोज सहन करता हूँ, कि अब मुझे पापा बोलने वाला कभी इस दुनिया में नहीं आएगा। निक ने कहा, एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं है। देखो दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, और दुनिया में ऐसे बहुत से कपल भी हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, तो क्यों ना दोनों मिलकर एक दूसरे की कमी को पूरा करें। ऐसे उन बच्चों को अच्छा भविष्य मिल सकता है। क्या हुआ जो नंदिनी माँ नहीं बन सकती, आप लोग बच्चा अडॉप्ट कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि आपको अभी भी निराश होने की कोई ज़रूरत है, आपका सपना अभी भी पूरा हो सकता है। आप उन्हें प्यार दोगे तो वे आपको पापा भी बोलेंगे और आपका दर्द भी दूर हो जाएगा। मोहित ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। नंदिनी मोहित के पास आई और उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ और यहाँ से कुछ दूर एक अनाथ आश्रम है, अगर आपको मदद चाहिए तो मैं आपको वहाँ तक पहुँचा दूंगी मोहित भैया। मीरा के मुंह से उनका नाम सुनकर निक चौंक गया। तुम जानती हो इन्हें? उसने पूछा। मीरा ने कहा, हाँ, इनका घर ग्राउंड फ्लोर पर है, लेकिन आज आप ऊपर क्या कर रहे हैं? मोहित ने नजरें नीची करके कहा। वो मैं बहुत गुस्से में था तो मैं सुसाइड करने के लिए ऊपर गया था, और नंदिनी मेरे पीछे मुझे रोकने के लिए आई थी। और अगर तुम मर जाते तो तुम्हारे पीछे नंदिनी को जो तकलीफ झेलनी पड़ती वो तो तुम कभी समझ भी नहीं सकते। जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन पीछे वाला उसकी यादों में तड़पता रह जाता है। पता नहीं क्यों लोगों को मरना ही हर प्रॉब्लम का सलूशन लगता है। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती हैं, निक ने उसे समझाया। मोहित ने नंदिनी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, आई एम सॉरी नंदिनी, हम कल ही किसी ऑर्फनेज में जाएंगे और वहां जाकर अडॉप्शन का फॉर्म फिल कर देंगे। थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें जीने का एक नया मकसद दे दिया। अपनी वाइफ को हमेशा खुश रखना। निक की बात सुनकर मीरा ने सोचा, इनकी वाइफ कितनी लकी होगी ना जो उसे इन जैसा पति मिला। लेकिन लगता है दोनों साथ नहीं है, तभी कहीं ना कहीं इनकी बातों से इस बात का दर्द साफ झलकता है। शायद इसी वजह से ये इतने रूढ़ हो गए हैं। निक के समझाने पर मोहित और नंदिनी वहां से एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने घर की ओर बढ़ गए। निक भी घर जाने लगा कि तभी मीरा ने पीछे से आवाज लगाई, अरे रुकिए ना एक बार, मुझे आपसे कुछ पूछना था। अभी नहीं, अभी तुम्हारी बातों से भी जरूरी कुछ और काम है, निक ने हड़बड़ाहट में जवाब दिया और जल्दी से घर के अंदर चला गया।